समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ इनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। एंड एज यूजुअल मुकेश ने कुछ भी छोड़ा नहीं है मेरे लिए बात करने को। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू एंड यस ऑफ कोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो हम लोग जाएंगे देश के मुख्तलिफ हिस्सों में। वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट स्पेशल स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम देयर। एंड मुकेश, वी ऑल नो दैट last night a very tragic news was broken to all the Indians with the passing away of Zakir Hussain. So of course our Dateline India is dedicated to him. So pehle shuruaat lekin kar lete hain headlines se.
Ji bilkul.
Prime Minister Narendra Modi holds talks with Sri Lankan President Anuradha Kumarasinghe in New Delhi.
राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा जारी।
यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज इट इज टाइम टू रीअफर्म कमिटमेंट टू बिल्ड इंडिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अक्यूजेस गवर्नमेंट ऑफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन।
राष्ट्र आज 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की स्मृति में विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है।
President, Vice President and Prime Minister express grief on the demise of tabla maestro Zakir Hussain.
Israel ke pradhanmantri Benjamin Netanyahu aur America ke navnirvachit rashtrapati Donald Trump ne Hamas dwara bandhak banaye gaye logon aur Syria ki sthiti par charcha ki.
And in cricket, rain disrupts third day's play between India and Australia in Brisbane. Visitors were 51-4 at stumps. And now it's time for Dateline India, and as I had already mentioned that today we are dedicating our this segment of ours to Ustad Zakir Hussain. और कुछ शख्सियत तो ऐसे होती हैं जैसे कि मुकेश के सूरज को चिराग दिखाने जैसी बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कि तबला और क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में जाकिर हुसैन was that rising and shining sun, you can say, who will always be there and his radiance will always be there. And I opened this segment with a quote of Zakir Hussain himself. He said, "The tabla is an instrument that speaks the language of rhythm with the greatest clarity."
बिल्कुल, तबला बजाना अपने हाथों से किताब पढ़ने और बिना शब्दों के बोलने जैसा है। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार को दिए एक साक्षात्कार को, हम उसका कुछ अंश सुनते हैं जो जाकिर हुसैन ने आकाशवाणी को दिया था।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ निमंत्रण देने का। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि आपके श्रोतागण से, आपके सुनकारों से बातचीत करूँ आज। मेरे पिताजी ने मुझसे हमेशा ये कहा कि वो तो सरस्वती के पुजारी हैं। तो कला की सेवा करना, संगीत की पूजा करना, ये तो एक हमारे घर का धर्म है, ये समझिए। तो अब मैं जब मंच पर जाता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं एक पूजा के स्थान पर हूँ, और वहाँ मैं ऐसे बन के जाऊँ जैसे कोई उस्ताद या कोई बड़ा आदमी हो, ये हो ही नहीं सकता। और मेरे हाथ में तबला है जिसमें तबले में सरस्वती गणेश जी समाये हुए हैं। तो जब उनको मैं लेकर जब स्टेज पे जा रहा हूँ तो मैं तो एक, क्या कहना चाहिए, एक कूली हूँ बिल्कुल। और मैं उनको उठाकर मंच पर रख रहा हूँ और वो जो कहेंगे वही मैं कर पाऊंगा।
What a beautiful way to express. And see, I mean, I have seen that people who reach the zenith, they know that there is still so much to learn, and you see the kind of humility and modesty in them. So वहाँ पे भी ये देखिए, उनके इंटरव्यू से हम लोग को पता चल रहा है, उनके शब्दों से वो कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, जो दिया है वो माँ सरस्वती ने, जो मुझे दिया मैं वो लेके वहाँ जा रहा हूँ। And in fact, there's a very interesting anecdote Mukesh related to his life. He in another interview he had told that usually in मुस्लिम हाउस होल्ड व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो कान में कुछ कुरान के वर्सेस सबसे पहले बच्चे के कहे जाते हैं. तो उनकी भी माँ ने जब जाकिर हुसैन व्हेन ही वाज बॉर्न, उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा खान अपने हस्बैंड को जब दिया कि आप जो है इस बच्चे के कान में वो कुरान के वर्सेस पढ़ें, तो या जो भी प्रेयर है, तो उन्होंने जो है राग और ताल उनके कानों में सुनाई. तो ऑफकोर्स जाकिर हुसैन मदर वॉज क्वाइट स्टार्टल्ड एंड शी सेड दैट, मैंने आपसे कहा था कि कुछ दुआएं पढ़िए, कहेंगे मैं ये मेरी इबादत यही है, तो मेरी दुआ यही है, इसलिए दैट्स वाई दिस इज हाउ आई रिमेम्बर गॉड एंड दिस इज हाउ आई फील हिज प्रेजेंस, दैट्स वाई आई एम रिसाइटिंग दीज ताल्स इन फ्रंट यू नो इंस्टेड ऑफ द यू नो द वर्सेस फ्रॉम द स्क्रिप्चर. सो आई थिंक सच अ ब्यूटिफुल a legacy that has been left behind. Of course, I don't say that a vacuum has been left, because vacuum to kabhi nahi ho sakta ek artist ka who has left such a great body of work behind. But yes, the physical being has left, and uski to zahir si baat hai, sabko hi you can say ek tarah se dukh hai hi hai. And well, he passed away in the United States last night. He was 73 years old. Family sources said that he was battling with blood pressure related problems. He had been admitted to hospital in San Francisco after experiencing some heart related problems.
बिल्कुल, तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन अपनी असाधारण रचनात्मकता और आविष्कार के लिए जाने जाते थे, और वो भारत और पश्चिम की संगीत परंपराओं के बीच एक सेतु थे. उन्होंने जाकिर हुसैन के निधन को संगीत की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति बताया.
And still somehow I would say that कोई भी, as I had mentioned, के कोई वैक्यूम नहीं होता, क्योंकि एक आर्टिस्ट का इतना बड़ा एक जखीरा होता है उसके टैलेंट का जो पीछे होता है. सो मे बी एक क्षति नहीं पहुंची, इनफैक्ट जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक थी वो एक अलग ही आयाम पे पहुंची बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. एंड वाइस प्रेजिडेंट जगदीप धनखड़ सेड दैट अ रेनाउंड तबला लेजेंड हु टुक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू द ग्लोबल स्टेज, जाकिर हुसैन हैज लेफ्ट बिहाइंड अ रिच लेगेसी एंड एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन भारत कल्चरल लैंडस्केप.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जाकिर हुसैन को एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा. उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया में क्रांति पैदा कर दी थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने तबले को वैश्विक मंच पर पहुंचाया और अपनी अद्वितीय लय से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया. श्री मोदी ने कहा कि जाकिर हुसैन ने भारतीय शास्त्रीय परंपराओं को वैश्विक संगीत के साथ सहजता से मिश्रित किया, इस प्रकार वो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गए. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्रतिष्ठित प्रस्तुतियां और भावपूर्ण रचनाएं संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने में एक योगदान देंगी.
उस्ताद जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न ऑन 9th of March 1951 इन मुंबई. He was the eldest son of legendary tabla maestro Ustad Allah Rakha. We know that tabla is a pair of twin hand drums of contrasting sizes and shapes. These two drums are commonly called dayan, the right drum, and bayan, which is the left drum. And it is interesting to note that the word tabla is derived from the Arabic word tablu, which means a drum. Tabla is the most commonly used membranophone percussion musical instrument in Hindustani classical music. And जो दाया और बाया है खासतौर से, वो actually मतलब ये तबला जो है वो इंडिया की ही एक, कह सकते हैं कुछ लोग कहते हैं अमीर खुसरो की देन है, क्योंकि पखावत जो होता है था वो इट्स लाइक अ सिंगल ड्रम, बट उसके जो दाएं और बाएं के दो टुकड़े कर दिए तो वो तबले में तब्दील हो गए.
बिल्कुल, तबला भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है. इसका उपयोग लोक संगीत प्रदर्शन, भजन और कथक जैसे नृत्य प्रदर्शन में एकल वाद्य यंत्र के रूप में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है.
उस्ताद जाकिर हुसैन म्यूजिकल करियर बिगैन एट अ वेरी यंग एज. इनफैक्ट एज आई हैड मेंशन्ड के एट अ यंग एज, क्या जैसे ही वो दुनिया में बाहर आए, मेरे ख्याल से तभी से उनका जो है रियाज कहिए या उनकी जो तालीम कहिए वो शुरू हो गई. ही वॉज जस्ट 7 व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द तबला एंड एट 12 ही हैड ऑलरेडी गिवन हिज फर्स्ट कॉन्सर्ट. ही परस्यूड हिज एजुकेशन इन मुंबई. ही ऑल्सो अर्नड अ डॉक्टरेट इन म्यूजिक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन.
बिल्कुल, जाकिर हुसैन को उनके शुरुआती वर्षों में एक प्रतिभाशाली वर्षीय बालक माना जाता था। बोलने से पहले ही उन्होंने लय की सहज समझ दिखाई। ऐसे समय में जब अधिकांश बच्चे केवल ध्वनियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर रहे थे, उनके पिता ने उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में त्रुटिहीन ताल बजाते हुए देखा। जाकिर हुसैन के लिए संगीत सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। दुनिया भर के लोगों, परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ने का एक तरीका था। आज की चर्चा का हमारा दूसरा विषय है विजय दिवस। जी हां, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की स्मृति में राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है। हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह ऐतिहासिक दिन बांग्लादेश के निर्माण और भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व में निर्णायक सैन्य जीत की याद दिलाता है।
That's true, Mukesh. Bangladesh celebrates its victory day today. It was on this day in the year 1971 that the country was liberated from Pakistan's occupation forces after a 9-month-long war of liberation. The nation would take a renewed pledge to translate into reality the hopes and aspirations of the war of liberation and the dreams of the martyrs who made supreme sacrifices to liberate their beloved motherland from the Pakistan's occupational forces.
Ji haan, is avsar par Rashtrapati Draupadi Murmu, Uparashtrapati Jagdeep Dhankhad, Pradhanmantri Narendra Modi aur Raksha Mantri Rajnath Singh ne 1971 ke yuddh ke veer sainikon ko shraddhanjali di hai.
Vice President Jagdeep Dhankhad also paid homage to the martyrs of the 1971 war and praised the heroic valor and selfless sacrifices of the soldiers. In a social media post, Prime Minister Modi honored the courage and sacrifices of the brave soldiers and said that selfless dedication and unwavering resolve of the soldiers safeguarded and brought glory to the nation. Now let's take you to Jalandhar, where Panther Division of the Indian Army celebrated the momentous occasion with a stunning display of military equipment at Amritsar and felicitation of the Veer Naris, showcasing the nation's strength and unity.
One of the most poignant moments of the last evening ceremony was honoring those Veer Naris whose husbands made the supreme sacrifice during the 1971 war. They were honored in recognition of their courage and resilience. A grand cultural evening, Ek Sham Veeron Ke Naam, at the historic Gobindgarh Fort in Amritsar, showcasing military campaigns involving the gallantry of Indian Army to include the most fiercely fought battle of Dograi and Pul Kanjri was worth watching. A light and sound show depicting the legendary Battle of Saragadi took the audience on a journey through one of the most heroic chapters in military history. Various weapons and equipments were also displayed on the occasion. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
And let's see how Vijay Diwas was observed in Agartala.
An octogenarian Bikaj Chaudhary, who worked as a journalist in Popular Daily from Tripura, Dainik Sambad those days, recalls that it was an wholehearted gesture from the locals, which included Bengali and indigenous people, to welcome those who came from neighboring East Pakistan. Mr. Chaudhary said the unreserved hospitality displayed by the local people from Tripura was heartwarming, as no single incident of violence was reported towards the refugees who came from Bangladesh in any corner of Tripura. For majority of refugees, he says, it was like finding a second home in Tripura after leaving their motherland. The 57th Mountain Artillery Brigade today organized a program to commemorate the Vijay Diwas at the Albert Ekka War Memorial in Agartala. Governor Indra Sena Reddy Nallu paid tributes to the martyrs at Albert Ekka War Memorial.
Vijay Diwas ke sandarbh mein aaj main phir ek baar apne army ke jitne bhi jawan pran tyag diye hain un logon ko main aabhar prakat karta hu, unke families ko main acche bhagwan shakti de aisa main prarthana karta hu.
People of Agartala resonated with patriotic fervor as it celebrated the Mahan Vijay Diwas today. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
Agartala. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा के साथ। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। तो सबसे पहले कहां श्रीनगर चलें?
Yes, absolutely. Let's start our journey with the heaven on earth, Kashmir. Well, energy efficiency stands as a cornerstone of sustainable development, weaving together the threads of progress and environmental safety. Let's see what's happening in Kashmir.
The experts opine that there's an urgent need to understand the shared responsibility for adopting sustainable energy practices. They say that an environment is needed to be created to instill a culture of energy consciousness among all citizens. The objectives of raising awareness, promoting efficiency, reducing wastage and fostering responsibility would light the way to a sustainable future. Talking to Parikrama, Principal Secretary, Power Development Department, Jammu and Kashmir, H. Rajesh Prasad expressed his views.
Government of J&K is committed to the objectives of green energy, sustainable development and to reduce the carbon print. We have taken steps to bank upon the green energy to the extent of 50% through the hydropower and also the solar energy. The Government of India's the latest scheme of Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana and also solarization of the government buildings on the route of solarization and also propagate the green energy.
It's a collective duty that requires integrating energy conscious behavior into our daily life. By doing so, we will not only save resources for the future generations but also contribute to reducing environmental degradation. Tariq Rathar for Parikrama, Srinagar.
और चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में तानसेन समारोह चल रहा है। इस दौरान देश विदेश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समारोह के पहले दिन एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है, तो अपने संवाददाता से जानते हैं कि क्या विश्व रिकॉर्ड बना है।
तानसेन समाधि परिसर में महेश्वर के ऐतिहासिक किले की थीम पर बने आकर्षक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर संगीत व कला की अद्भुत नगरी है। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को संगीत हब बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री सिंधिया ने तानसेन समारोह की तर्ज पर बैजू बावरा की स्मृति में चंदेरी संगीत महोत्सव को भव्य बनाने का आह्वान भी किया। आयोजन की सबसे खास उपलब्धि 346 कला साधकों द्वारा 9 वाद्य यंत्रों पर राग मल्हार, मियां की तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा का समवेत वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। सुरों की साधनाओं को समर्पित समवेत प्रस्तुति में देश और प्रदेश के 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का वादन एक साथ किया। समवेत प्रस्तुति के माध्यम से स्वर सम्राट तानसेन को स्वरांजलि अर्पित की गई। प्रस्तुति का संयोजन सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार ने किया। समवेत प्रस्तुति में वाद्य यंत्रों के साथ गायन भी शामिल था। तानसेन समारोह के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 5 रूपए का डाक टिकट जारी किया गया है। वहीं तानसेन समारोह की 100 वर्षीय यात्रा पर केंद्रित पुस्तक और इस साल के आयोजन पर तैयार की गई स्मारिका का विमोचन भी किया गया। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
And now we head towards my favorite state, Goa. Yes, the Serendipity Art Festival 2024 is being held in Panjim from the 15th December to 22nd of December. This is the 9th edition of this unique festival and one of the biggest festival of its kind in South Asia. Let's hear more from Tushar Jadhav.
The Serendipity Art Festival is a multidisciplinary art event held annually every December in Goa. This week-long festival is curated by a panel of eminent artists and institutional figures. The festival is a long-term cultural project that hopes to instigate positive changes across the arts in India on large scale. Artists from the Indian subcontinent and beyond participate in the festival. Over 200 events of the art, music, theatre, etc. and more than 1800 artists are showcasing their skill in the art forms in the coming Serendipity Art Festival.
This edition of Serendipity Art Festival is a very spectacular and exciting due to its richness of multidisciplinary art forms. The festival will transform 22 plus venues across Panaji into vibrant hubs for artist expression. Visitors can expect a diverse range of cultural experiences, including traditional Shigmo performances, captivating presentations by the Kastuba Ballet Troupe, and dances by the Viomi Troupe and Dekani Troupe.
The word Serendipity literally means the unexpected unexpected good luck. In true sense, this 9th edition of a Serendipity Art Festival 2024 will be proven like a serendipity. This festival is an icing on a cake in the terms of visiting Goa amidst the Christmas and New Year welcome celebrations. Tushar Jadhav, Bhar Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
और खेल जगत की ताजा तरीन जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र. धर्मेंद्र बताएं कहां से शुरू करेंगे खेल की जानकारी.
मुकेश, ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 51 रन बना लिए थे. केएल राहुल 33 और कप्तान रोहित शर्मा बिना कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद हैं. आज मैच बारिश के कारण कई बार रोकना पड़ा. भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम से अभी भी 394 रन पीछे है. उसे फॉल ऑन बचाने के लिए अभी और 195 रन की आवश्यकता है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 445 रन बनाकर आउट हो गई. भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए, सिराज ने 2 जबकि नीतीश रेड्डी और आकाशदीप ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया. उधर भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है. कल रात ओमान की राजधानी मस्कत में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 3-2 से पराजित किया. शूट आउट में साक्षी राणा, इशिका और सुनीलिता टोप्पो ने गोल किए जबकि भारतीय गोलकीपर निधि ने पेनल्टी शूट आउट में 3 गोल बचाए. इससे पहले जिन जुआंग ने चीन के लिए मैच का पहला गोल किया, भारत की कणिका सिवाच ने तीसरे क्वार्टर में गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया. नियमित समय में 1-1 की बराबरी के बाद मैच का फैसला शूट आउट से करना पड़ा. भारत की दीपिका सहरावत ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए. हॉकी इंडिया ने इस शानदार जीत के लिए टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है. विश्व शतरंज चैंपियन डी कुकेश का आज स्वदेश वापसी के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया. सैकड़ों प्रशंसकों और खेल प्रेमियों ने गुकेश का झंडे और बैनर के साथ अभिनंदन किया. चेन्नई हवाई अड्डे पर राज्य खेल मंत्रालय के कई अधिकारी भी गुकेश का स्वागत करने पहुंचे. इस दौरान गुकेश ने मीडिया से कहा कि बचपन से उनका सपना विश्व चैंपियन बनने का था. उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए खेल को सीखने का आनंद लेना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुधार करते रहना चाहिए.
धन्यवाद धर्मेंद्र. और सारा आप बता दें कि व्यापार जगत में क्या हलचल मची हुई है.
वेल मुकेश, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन रेड टुडे विद losses of 0.4% amid weak global cues. The 30-share BSE Sensex fell 384 points to close at 81,748 and the NSE Nifty 50 dipped 100 points to end at 24,668.
और अब समय आ गया है आजादी का सफर. जी हाँ, जिसमें जिस कार्यक्रम में हम जानते हैं, इस सेक्शन में हम जानते हैं कि भारतीय जो क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तो आइए सुनते हैं आजादी का सफर.
इन टुडेज एपिसोड वी रिमेंबर एजुकेशनिस्ट, राइटर एंड जर्नलिस्ट उमेश चंद्र दत्त, हु वाज बोर्न ऑन द 16th ऑफ दिसंबर 1840 इन द साउथ 24 परगनास. He was a pioneer Brahmo Samaj activist who left his mark in various fields of society.
Umesh Chandra joined Brahmo Samaj in 1859 and very soon came close to Keshab Chandra Sen and firmly established the Brahmo Samaj in Harinavi, West Bengal. When the Brahmo Samaj was divided into two sections, Umesh Chandra became one of the popular activists of the section under Keshab Chandra Sen. In 1863, Umesh Chandra, along with a few other young activists, established the Bama Bodhini Sabha. The main objective of this Sabha was to educate and uplift the condition of Bama, or women, in the society. He edited the Bama Bodhini Patrika for 40 years till 1902. This newspaper had an important role in the emancipation of women and spread of female education. The Bama Bodhini Patrika continued till 1922. He also edited two weeklies, the Dharma Sadho and Bharat Sanskarak.
Umesh Chandra had taught in several schools. In 1893, he opened a school for the deaf and dumb at Moniktala in Kolkata. He was a member of the executive committee of Bethune College in Kolkata and a member of the Senate of Kolkata University. And thus, he contributed a lot to these institutions. Umesh Chandra led a very simple life and hence he was called an ascetic by people. He died in 1907. We salute this great reformer who worked for women's upliftment and their education.
We also remember advocate of democracy and a staunch supporter of empowerment of the depressed classes, Panaganti Ramaraya Ningar, who left us on 16th of December 1928. Also known as Raja of Panagal, Ramaraya Ningar was one of the founder members of the Justice Party and the Premier of Madras Presidency from 11th of July 1921 to the 3rd of December 1926.
Ramaraya Ningar was born into an aristocratic family of Kalahasti, Andhra Pradesh. His public life began when he was selected as member of North Arcot District Board. In 1912, he became a member of the Imperial Legislative Council in Delhi. In 1918, he was awarded the title of Diwan Bahadur. He was also made a member of the Imperial War Council the same year. Back in Madras, meanwhile, the non-Brahmin movement was gaining momentum. With the formation of the Justice Party, Ramaraya Ningar joined it and was soon recognized as one of its leading lights. He was sent to England to depose before a parliamentary committee on the condition of the non-Brahmins in South India. In 1921, Ramaraya Ningar became the Chief Minister.
The Panagal administration was known for some far-reaching reforms. Reservation and government jobs was brought in, thereby putting Madras on the route to inclusivity. The administration of temples and mutts came under a newly formed Hindu Religious Endowments Board. Panaganti Ramaraya Ningar continued to remain active in politics and served as the president of the Justice Party until his death on the 16th of December 1928. We salute this great Indian.
और अब समय है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह को। आज उनकी पुण्यतिथि है। हॉकी की जब भी बात होती है तो मन में सबसे पहला ख्याल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आता है। हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल ध्यानचंद ने ही किए थे, लेकिन एक और खिलाड़ी भी है जो शायद ध्यानचंद जितना मशहूर ना हुआ हो, लेकिन खुद ध्यानचंद उन्हें अपने से बड़ा खिलाड़ी मानते थे, और वो थे रूप सिंह, जिन्हें भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के भाई के नाम से जाना जाता है, और शायद इसी वजह से लोगों ने उन्हें भुला दिया और हॉकी के जादूगर की उपाधि निर्विरोध ध्यानचंद को दी गई।
We are also remembering Lakshmikant Berde today, predominantly who appeared in Marathi films as an actor, but his light slapstick performances in Hindi films are also quite remembered. And let's hear one of his dialogues.
मनोहर तू यहाँ क्या कर रहा है? ठीक से बोल, क्या चाहिए?
प्रेम ने सिगरेट मंगाई थी, किताब मंगाई थी, हमारे प्रिय पापा जी। मिल गए यहाँ बुट्टा, मिल गए यहाँ बुट्टा।
प्रेम कहाँ है?
ओ, कमरे में कपड़े चेंज कर रहे हैं। मैडम आपके लिए है।
Stupid.
Same to you, madam. Madam, madam, madam. आप प्रेम के रूम में जा रही हैं?
क्यों, कोई एतराज?
नहीं, उनके कमरे का दरवाजा जरा संभल कर खुलेगा, अच्छा रहेगा।
और भारतीय प्रसिद्ध कव्वाल शकीला बानो की आज पुण्यतिथि है। भोपाल की पहचान शकीला बानो को पहली महिला कव्वाल देने का दर्जा प्राप्त है, और काफी लंबे समय के बाद उन्हें फिल्म और स्टेज पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला था। शकीला बानो की प्रसिद्धि भारत के बाहर देशों में भी है। उन्होंने पूर्वी अफ्रीका, इंग्लैंड और कुवैत जैसे देशों में अपने कार्यक्रम पेश किए थे।
Today is also Harshdeep Kaur's birthday. We all know that she has given some memorable songs in her very Sufiana voice, whether it's Hindi, Punjabi or English. Or unko to Sufi ki Sultana kaha jata hai, lekin ek film aayi thi Razi, usme bahut khoobsurat song ka gaana hai. Let's listen to that.
Tukda hu tere dil ka, ek एक बार फिर से दहलीज पार करा दे
तो श्रोताओं अब समय हो चला आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
yes, and, it's time to call a wrap, और आप सुन रहे हैं जाकिर हुसैन का वेरी फेमस फ्यूजन विद जॉन मैक्लाफ्लिन। उसके साथ ही दीजिए इजाजत मुकेश और सायरा को। नमस्कार, नमस्कार।